ಸಕದಾಂಬೋಜೋ ರಾಧಾಮದನ ಮೋಹ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವೃಣೇಂದ್ರರುದ್ರಮೃತಸ್ತನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ವೇದೇ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈ ಗಾಯಂತಿ ಎಂ ಸಾಮಗಾ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತತ್ಕತೇರ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾಸುರಗಣ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. कल हम भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार पूतना का वध किया उसका चर्चा किए, और पूतना सूचित करता है कि किस प्रकार हमारे मन में जो मिथ्या गुरु को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है उसको भगवान श्री कृष्ण वध करते हैं. कृष्ण का जन्म होते ही सारे जितने भी मिथ्या गुरु के हृदय में डर उत्पन्न होता है उनका नाश का संकेत दिया जाता है. ये कृष्ण भावना का प्रचार ही एक घोषणा है सारे जगत को मिथ्या गुरुओं को नाश करने का. जिस प्रकार कृष्ण पैदा होते ही मिथ्या गुरु को नाश किए, कृष्ण भावना का प्रचार से सारे मिथ्या गुरुओं को नाश होता है. ये मिथ्या गुरुओं का ये स्वभाव रहता है कि जहां भी उनको कृष्ण भावना का जरा सा भी किसी के हृदय में प्रकाशित होते हुए दिखाई पड़ता है, शुरुआत में वो आके नाश करना चाहते. जिस प्रकार पूतना राक्षसी होने पर भी एक सुंदर सहस्त्री रूप स्त्री के रूप में अपने आप को प्रकट की, तो वैसे ही ये जितने भी असुर लोग हैं कलयुग में वो एक गुरु के रूप में आते हैं, एक साधु के रूप में आते हैं, और क्या करते हैं वो धर्म के नाम के अधर्म का प्रचार करते हैं. इन सब बातों को हमने कल चर्चा किया. आज हम दो असुरों के बारे में चर्चा करेंगे, दो ये शकटासुर और तृणावर्त. भगवान श्री कृष्ण ने इन दो असुरों को कैसे वध किया और ये दो असुर किस कौन से अनर्थ को सूचित करते हैं आज उसका चर्चा करेंगे. तो सबसे पहला हम चर्चा करेंगे शकटासुर के बारे में. शकटासुर सूचित करते हैं चकटासुर का जो असुर है जो हमारे हृदय में हमको मालूम है. ये शकटासुर एक ठेला गाड़ी के रूप में आए थे और ये ठेला गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पुराने बर्तन रखे थे, बड़े बड़े बर्तन रखे थे. और ये शकटासुर का जो शरीर है वो हवा से बना हुआ था शरीर का, क्योंकि पिछले जन्म में ये शकटासुर का बहुत बड़ा भारी सा शरीर था उनका. और जब वो कहीं भी चलते थे तो क्या होता था, तो बहुत सारे पेड़ वगैरह गिर जाते थे, बहुत अंकार वर्ष चलते थे. तो ये हिरण्याक्ष का पुत्र था पिछले जन्म में, उत्कचा करके उसका नाम था. और लोमशम ऋषि के आश्रम में ये जब पहुंचे तो उन्होंने उधर से सारे पेड़ों को गिरा दिया था, इसलिए लोमश ऋषि को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उनको शाप दिया कि आपका शरीर नाश हो जाए, यानी ये जो भारी सा शरीर है वो एकदम हल्का सा हो जाए, हवा जैसा हो जाए. तो इसलिए उनका जो शरीर है वो वायु से बना हुआ था, इसलिए वो कहीं भी कोई भी रूप धारण कर सकते थे. अभी एक बड़ा सा ठेला गाड़ी था, वो ठेला गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पुराने बर्तन रखे थे, उसके नीचे एक बिस्तर था. तो यशोदा मई ने क्या किया था कि भगवान श्री कृष्ण को इस बिस्तर के ऊपर लेटाया था, और ये शकटासुर उन्होंने सोचा कि मैं आऊंगा इस रूप में और ये सारे बर्तनों को गिरा के और इसको कृष्ण को मैं वध कर दूंगा, तो करके वो ठेला गाड़ी के ऊपर वो अपना रूप ठेला गाड़ी के साथ वो समा गया था. तो ये शकटासुर है, क्योंकि ये ठेला गाड़ी के ऊपर जनरली बहुत पुराने बर्तन रखे रहते हैं, तो ये जो पुराने बर्तन कुछ काम का नहीं होता है लेकिन फिर भी घर में एक भार जैसा बना हुआ रहता है. तो ये असुर सूचित करता है कि हमारे जो हैबिट्स है, आदतें हैं, बुरी आदतें, पुराने बुरे आदतों को सूचित करता है. और ये भी सूचित करता है कि किस प्रकार आलसीपन, ये भी एक प्रकार का अनर्थ है, और डलनेस यानी एक प्रकार का मनहूस अपने आप को महसूस करना. तो ये आलसीपन और दोनों ये भी डलनेस भी आलसीपन ही है, आलसीपन को सूचित करता है। तो एक लोड कैरिंग मेंटालिटी ऑफ द प्रीवियस बैड हैबिट्स। तो ये दो मुख्यतः ये दो दो अनर्थों को सूचित करता है, एक है लेथर्जी, दूसरा है लेथर्जी मतलब आलसीपन, दूसरा है पुराने जो गंदे आदतें हैं भक्ति में आने से पहले जो गंदे आदतें हैं हैबिट्स बैड हैबिट्स, ये भी सूचित करता है भार लोड कैरिंग मेंटालिटी। तो श्री कृष्ण का भी 3 महीना होने को आया, तो समय बचपन में आपने अगर बच्चों को खास नजदीक से देखे होंगे वो 4-5 महीने के बाद ही थोड़ा सा वो उठना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण 3रा महीने भी वो उठना शुरू किए, यानी थोड़ा उसको करवट बदलने की जो समय है वो आया। उसको बोलते हैं उत्थान संस्कार, उत्थान संस्कार, उत्थान मतलब उठना। अभी बस वो हाथ को ऐसा रख के उठने के प्रयास करते हैं, उठ के ऐसा पलट करने पलटने की वो एक दशा होती है बाल बचपन में। तो उस समय एक संस्कार मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है उत्थान उत्सव। उसमें यशोदा माई और भाई आनंद महाराज बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, निमंत्रण देके इस संस्कार में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। उस समय यशोदा माई ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अच्छी तरह से वो एक वो ठेला गाड़ी के नीचे जो बिस्तर था उधर सुलाए। तो सुला के वो बहुत सारे जितने भी लोग गेस्ट लोग आए थे उनको देखभाल करने के लिए यशोदा माई गई। तब यशोदा माई उनसे देखभाल कर रहे थे, कृष्ण को बहुत भूख लगा, भूख लगा तो यशोदा माई का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कृष्ण रोना शुरू किए। लेकिन इधर बहुत सारे ब्राह्मण लोग मंत्रों को उच्चारण कर रहे थे और वाद्य सामग्री चल रहा था, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे, इसलिए यशोदा माई को ये सब कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। और दंद महाराज भी बहुत व्यस्त थे ब्राह्मणों को दान धर्म वगैरह करने में। तो उस समय कृष्ण को इतना गुस्सा आया कि वो सोचने लगे कि यशोदा माई का कर्तव्य मुझे दूध पिलाना, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि ऊपर देखे कि ठेला गाड़ी है उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन हैं, मैं उन सब बर्तनों को गिरा दूंगा, ठेला गाड़ी को तोड़ दूंगा तो बड़ा आवाज आएगा, तो आवाज से यशोदा माई का ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना जो चरण है वो चरण को गुस्से में हवा में ढकेल दिया, हवा में ऊपर ऊपर किया, वो लात मारा। तो ऐसा बोला जाता है कि छोटे से कृष्ण हैं, उनका छह पैर उतना ऊंचा तक कैसे गया। तो ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि ये शकटासुर भले ही वो हवा के रूप में आया था लेकिन उनका शरीर बहुत भारी होने के नाते वो जो ठेला गाड़ी है वो नीचे आ गया था और कृष्ण का चरण आसानी से ऊपर तक पहुंच सकता था और ठेला गाड़ी को उन्होंने लात मारा। जैसे वो ठेला गाड़ी को लात मारा, ठेला गाड़ी जो है वो तितर बितर हो गया, ऊपर जो बर्तन थे वो सारे बर्तन जो है नीचे गिर पड़े और धुआंधार बड़ा सा आवाज आने लगा और सभी लोग घबरा गए, आके देखे कृष्ण को तो कुछ हुआ नहीं, आके देखे कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ था, भले वो सारे बर्तनों के नीचे वो उनका कृष्ण थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उनको इस प्रकार का अद्भुत सा कार्य करना होगा, किसी को लात मार के किसी को कुछ करना होगा, किसी को मारना होता, तो वामन अवतार में उन्होंने उसी प्रकार अपने चरण को ऊपर तक लिया था, लेकिन वामन अवतार में उन्होंने क्या किया था, अपने चरण को बड़ा सा शरीर बना दिया था और अपने चरण को भी बढ़ा दिया था। लेकिन इधर कृष्ण तृणावर्त को वध करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ अद्भुत सा कार्य किया नहीं, अद्भुत मतलब इस प्रकार का विशाल सा शरीर बनाना उन्होंने किया नहीं या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए एक बड़ा सा नरसिंह रूप धारण किया, तो वैसे कृष्ण को इस प्रकार का नरसिंह रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ा दृढ़ावर्त को वध करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान को कृष्ण को कुछ अलग सा रूप धारण करना नहीं पड़ता है कुछ असुरों को वध करने के लिए कृष्ण अवतार में, कोई और अन्य अवतारों में अन्य रूपों में उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, कुछ अस्वाभाविक रूप धारण करना पड़ा असुरों को वध करने के लिए, लेकिन इधर कृष्ण अपने ही स्वयं वपु यानी साधारण सा जो बालक के रूप में उन्होंने इस प्रकार कार्य किया। तो जैसे ये कार्य हुआ सभी लोग यशोदा माई और नंद महाराज सभी लोग आए, आके एकदम से घबरा गए और देखे कि कृष्ण उधर एकदम गुस्से से देख रहे हैं और सारे जितने बर्तन वर्तन नीचे गिरा हुआ है। और यशोदा मैं तुरंत जाके कृष्ण को दूध पिलाने लगी। पूतना का जब वध हुआ था उस समय यशोदा मैं ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, मंत्रोच्चारण कराया था, गाय का पूछ से कृष्ण को संरक्षण कराया था और नारायण के मंत्रों के द्वारा जितने भी उपचार होते हैं बालक का संरक्षण के लिए वो सब कुछ किया था। लेकिन इस समय यशोदा मैं ने ये सब कुछ किया लेकिन साथ साथ में उन्होंने यशोदा मैं ने बालक को दूध पिलाया। तो पुत्रा का जब वध हुआ था कृष्ण यशोदा मैंने दूध नहीं पिलाया था लेकिन वो सोचने लगी ऐसा लग सकता है कि मेरा बालक जो है मेरा दूध पिएगा तो उनका संरक्षण जरूर रहेगा और सुरक्षित रहेगा करके यशोदा मैं दूध पिलाने लगी। लेकिन उस समय उधर के जितने भी बालक थे, छोटे छोटे बालक थे, वो सब लोग बोलने लगे कि हमने देखा जो है कृष्ण का जो पैर लगा के उनको ठेलागड़ी को लात मारा तो इसके वजह से सब ये सब हुआ। बाकी सब जितने नंद महाराज और जितने भी उपनंद वगैरह उनके भाई वगैरह थे, गोप थे और गोपियां थी और यशोदा में, वो सब इन छोटे बालकों के ऊपर विश्वास नहीं किया। अरे ये तो ऐसे बोलते रहते, ये छोटा सा बालक है, इसको ऐसे ठेला गाड़ी को लात मार के इतना बड़ा भयंकर सा कार्य कैसे कर सकता है। तो उधर विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि भगवान का इतना शक्ति और ऐश्वर्य प्रकट प्रकाशित होने करने पर भी यशोदामय और नंद महाराज की वात्सल्य इतना था कि ये ऐश्वर्य शक्ति यशोदामय की वात्सल्य को जरा सा भी हिला नहीं पाई। या दूसरे शब्दों में ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण की बाल लीलाओं में बार बार यशोदामय की वात्सल्य को परीक्षा करती रही और यशोदामय हमेशा उस परीक्षा में उत्तीर्ण होती रही। शी वॉज ऑलवेज विनिंग इन द टेस्ट बाय द ऐश्वर्य शक्ति। जरा सा भी उनको विस्मय संशय नहीं हुआ कि मेरा कृष्ण मेरा पुत्र कृष्ण जो है वो भगवान है करके, उनके मन में कभी भी ये बात नहीं आया, हमेशा अपने कृष्ण को बालक के रूप में देखती थी। तो ये जैसे जितने भी बर्तन वगैरह थे नीचे गिर गए तो सारे जितने भी गोप वगैरह थे, नंद महाराज कितने भी अनुचर थे, वो सब आके बड़े बड़े बर्तनों को उठा के वापस जगह पे रखा। और ये गोप कुल के यादव कुल के अनुचित उचित कुछ संस्कार होते हैं, अगर कुछ घटना हो जाता है तो वो सब उचित संस्कार वो सब करने लगे। तो ये भागवत के ये सातवें अध्याय में, दसवां स्कंध का सातवें अध्याय में ये घटना हमको सुनने को मिलता है। लेकिन इसी सातवें अध्याय में भगवान ने तीन लीलाओं भगवान का तीन लीलाओं का वर्णन है। एक है त्रिणावर्त का वध का वर्णन है, दूसरा इसी शकटासुर का वध का वर्णन है, तो पहला दूसरा त्रिणावर्त का वध का वर्णन है और तीसरा है भगवान ने यशोदा मय को विश्व रूप का दर्शन कराया अपने मुंह में। ये तीन लीलाओं का वर्णन है, यानी ये तीनों में ऐश्वर्य लीला का वर्णन है। भगवान का बाल स्वरूप में है, यानी अभी वो केवल तीन महीने के है, उस रूप में उन्होंने ऐश्वर्य किस प्रकार दिखाया और ऐश्वर्य के द्वारा यशोदा में जरा सा भी उनका वात्सल्य कम नहीं हुआ, ये बात हमको जानने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये त्रिणावर्त यशकटासुर को वध करके हमको हमारे हृदय में यशकटासुर का लीला का श्रवण करने के द्वारा हमारे हृदय में कौन सा और किस प्रकार का अनर्थ को नाश करते हैं वो हम जरा चर्चा करेंगे। ये हमारे मन में बहुत सारे भार, बहुत सारे गंदे आदतें बहुत पुराने पुराने समय से या जन्म जन्मांतर से लेके आते रहते, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी वही पुराने जमाने का या पुराना पिछले जन्म का हो या भक्ति में आने के पहले के जो समय का जो अनर्थ है वो सब भी हम इस भक्ति मार्ग में हम लेके आते हैं। तो उससे हमको छुटकारा कैसे पाया जाए, हम इससे कैसे हटेंगे? ये भार जो है, ये आदतें, जैसे एक सेमिनार भी आप सुने होंगे कोई वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, द पावर ऑफ हैबिट्स। अगर किसी को किसी चीज का पहले से आदत है, ये आदतों से मुक्त होना या निकल जाना ये बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ हैबिट्स। ऐसा बोला जाता है कि द हैबिट्स आर सेकेंडरी नेचर, हमारा स्वभाव बन जाता है। ये जो आदतें हैं एक प्रकार का गौण स्वभावी समझ लीजिए, वो उसी के अनुसार हम अपना कार्य भी करते रहेंगे। मान लीजिए किसी का आदत है कोई भक्ति में आने से पहले कोई एक गंदा आदत है, कुछ अपशब्द या हर समय किसी को निंदा करना, ऐसा आदत है, तो तुरंत वो आदत लेके फिर भक्ति में आने के बाद वही आदत आ जाता है और उस आदत से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने हजारों सालों तक या बहुत सालों तक उसका अभ्यास करते आए हैं और भक्ति में आने के बाद उसको तुरंत छोड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक भक्त ये कृष्ण का शरणागत होते हुए इन प्रकार की ये तृणावर्त की वध की लीला का श्रवण करते हुए वो कृष्ण के सहारे से वो गंदी आदतों से मुक्त हो सकता है। ये गंदी आदतें एक भार के बराबर है, हम अपने सर के ऊपर जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उठा के लाते, इट इज ए लोड, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड वी कैरी इट। जैसे भागवत में कहा गया है कि भाराह परम पट्ट किरीट जुष्टम मत्युत्तम अंगम ननमेत मुकुंदम ननमेत मुकुंदम। जो भगवान का शरणागत नहीं होता, भगवान की सामने सर नहीं झुकाता, वो व्यक्ति क्या करता है, ये अपने सर के ऊपर एक बड़ा भार लेके जाता है। जैसे एक राजा है, एक राजा के सर के ऊपर बड़ा एक मुकुट होता है, मुकुट मुकुट मतलब क्या रहा है, सारा राज्य का भार अपने सर के ऊपर रखा है। लेकिन ये जो भार है, भले ही ऐसा लग सकता है लोगों के सामने, वाह कितना बड़ा मुकुट है, कितना सुंदर मुकुट है, ये तो शिरोमणि है, ये सारे चक्रवर्ती है, ये इतना बड़ा साम्राज्य को अपने सर के ऊपर लेके घूम रहा है, लेकिन अगर वो सर भगवान के सामने नहीं झुकता है, ऐसा बोला जाता है ये जो मुकुट है वो केवल भार मात्र है, भाराह परम पट्ट किरीट जुस्तम, ये शोभा नहीं देता उस व्यक्ति को, ये उसका ख्याति नहीं है, बल्कि एक जैसे आप पोर्टर, उसको कूली है, वो क्या करता है, वो दूसरे का सामान जो उसका नहीं है उसको जरूरत नहीं उठाने का, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 रुपए के लिए उठा के जाता है। तो वैसे ही ये राजा, ऐसे जरूरत नहीं है कुछ वो भार उठाने का, लेकिन फिर भी वो उठा के वो सोचता है कि मैं मां कितना महान हूं। तो ये भार साधारणतः हम जानते हैं कि जिम्मेदारी के रूप में लोग सोचते हैं कि मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, आई एम वेरी रेस्पॉन्सिबल। कोई परिवार का भार उठाता है, कोई समाज का भार उठाता है, कोई उसका भार उठाता है, वो सोचता है कि मेरे वजह से समाज चल रहा है, मेरे वजह से समाज परिवार चल रहा है, मैं सबका भार उठा के जा रहा हूं। लेकिन वो व्यक्ति जो इस प्रकार का आदत है, इस प्रकार सोचना कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है और मैं ये समाज का, ये परिवार का भार उठा के जा रहा हूं, वो मूर्ख है, he's a fool। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक कूली वो कुछ धन के लिए या 10-15 रुपए के लिए वो दूसरों को भार उठा के सोच रहा है कि मैं बड़ा कार्य कर रहा हूं, तो वैसे ही ये राजा भी या ऐसा कोई साधारण सा व्यक्ति जो परिवार का हो या किसी का भार उठा के जाता है और भगवान श्री कृष्ण के सामने वो नगमस्तक नहीं होता है, वो भी उसी प्रकार का भार उठा के जा रहा है, उसका फायदा नहीं। भक्तों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, वो कृष्ण की सेवा के अलावा कोई और भार को उठाना नहीं चाहिए। दे शुड नॉट कैरी एनी अदर लोड अदर देन सर्विस टू कृष्ण। कृष्ण की सेवा का जिम्मेदारी का भार जरूर उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का सेवा का जिम्मेदारी उठाता है तो भगवान कृष्ण आपका जो देखभाल, आपका एक भक्त का जो भार है वो उठाते हैं। जैसे एक साधारण सा लॉजिक देखिए, इधर कृष्ण की सेवा का छोटा सा जिम्मेदारी है, क्या कौन सी बड़ी बात है, उनके सामने प्रणाम करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, मंदिर को साफ करना, ये छोटे छोटे सेवाओं का जिम्मेदारी उठाने से भगवान हमारी जो देखभाल करने की जिम्मेदारी, हमारा जो भार है उठाने, तो कितना अच्छा सौदा है। देखिए भगवान सारा जगत का भार उठाते, भगवान अनंत देव क्या करते हैं, सारे जितने भी 14 भुवन है वो 14 भुवनों को अपनी फणों के ऊपर जिस प्रकार सुंदर से जो मोतियों का हार होता है उस प्रकार एक आभूषण के रूप में ये 14 भुवनों को धारण करके रखते हैं। आभूषण तो कोई भार तो नहीं है, एक आभूषण जो है उनको धारण करने से और अच्छा लगता है। तो ये 14 भुवन समझ लीजिए, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उसमें हम लोग एक अंश मात्र ये पृथ्वी है और उस पृथ्वी में एक छोटा सा चीज उठाने के लिए हमारा कितना ताकत लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना 14 भुवनों को एक आभूषण के रूप में धारण करते हैं, अनंत देव के रूप में। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति तो हमारा भार उठाएंगे तो कितना अच्छा है। ये बड़ा अच्छा सौदा है, थोड़ा सा कृष्ण का सेवा करो और अपना पूरा जीवन का भार कृष्ण उठाएंगे। ये साक्षात हम भगवद्गीता का एक आचार्य के, अनंत आचार्य करके है, वो बनारस में एक बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन साथ साथ में बहुत गरीब थे। वो एक भगवद्गीता के ऊपर अध्ययन कर रहे थे और टीका व्याख्या भी कर रहे थे, और करते करते एक श्लोक पे आए जिनका नाम है, वो श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम येजना परिपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस श्लोक के ऊपर अध्ययन करते हुए, इसके ऊपर व्याख्या करते हुए उन्होंने सोचा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो भगवान को नित्य हमेशा भजन करते रहते हैं, उनका श्रवण करते रहते हैं, उनका नामों का कीर्तन करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, ये जना परिपासते, हमेशा मेरी उपासना करते रहते हैं, तेषां, जैसे लोग जो मेरा नित्य सेवा में युक्त है, नित्याभियुक्तानां, भगवान इधर क्या बताते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका देखभाल मैं करूंगा, उनके पास जो है मैं संरक्षण करूंगा और उनके पास जो नहीं है मैं प्रदान करूंगा। वहाम्यहम्, ये जो शब्द है वहाम्य, वहाम्य मतलब मैं स्वयं करता हूं, भगवान स्वयं करता हूं करके बताते। तो उन्होंने सोचा कि भगवान तो नित्य लीलाओं में युक्त है, तो ये हमारी भक्तों की आवश्यकता वह स्वयं कैसे करते होंगे, किसी के द्वारा देते होंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं रोज भीख मांगने के लिए जाता हूं, तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो वो भगवान जो है उनको प्रेरणा देते हैं, ठीक है उनको दान दो, तो इसलिए किसी के द्वारा मुझे देखभाल करते हैं। तो ऐसा सोच के ये वहाम्य, ये शब्द मेरे ख्याल से ठीक नहीं है करके उन्होंने क्या किया, अपनी जो पेन से वो वहाम्य शब्द के ऊपर उन्होंने वो काट दिया, वहाम्य शब्द को, वहाम्य मतलब मैं करता हूं, आई पर्सनली डू इट, ये संस्कृत का ये शब्द होता है, आई पर्सनली डू इट। तो उस दिन अनंत आचार्य गए भीख मांगने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था, जो जिस दिन जो मिलता था उसी को द्वारा गुजारा करते थे। तो भीख मांगने के लिए उस दिन किसी के भी घर में जाते हैं, कोई बोलता है हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई हम दान नहीं दे सकते, कोई बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बोलते हैं हम तो अभी कुछ कहीं और दूसरे जगह जा रहे हैं। तो उस दिन किसी के घर में भी कुछ भी भीख नहीं मिला। उसी समय क्या हुआ, उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, तो उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा कि दो सुंदर से बालक, एक काला एक गोरा, उनके बहुत सुंदर गुंगराले बाल, और एक बड़ा सा गोनी उठा के लेके आ रहे थे, दोनों एक एक गोनी उठा के लेके आ रहे थे। तो उनकी जो पत्नी हो घबरा गई, अरे इतने सुंदर से बालक इतना क्या क्या उठा के लेके आ रहे हो? तो ये दोनों ने कहा कि आपके जो पति है वो हमारे गुरु है और उन्होंने ये सामान आपके लिए भेजा है। तो उन्होंने सोचा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ और मेरे पति को तो कोई शिष्य है ही नहीं, वैसे इतने सुंदर से बालक तो मेरे पति का शिष्य है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम उनके शिष्य है और ये आपके लिए करके वो दोनों गोनी उठा के आए और उनको पत्नी को दिए। तो जैसे गोनी नीचे किया उनकी पत्नी ने देखा उनके जो शरीर के पीठ के पीछे बड़े चाबुक से मारा हुआ जो निशान है, लाल लाल निशान। तो पत्नी ने पूछा कि इतना कौन मारा आपको इधर? तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे गुरुजी ने मारा, तो क्यों हम गोनी उठा के लेके आ रहे थे, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे, हम तो बच्चे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने क्या किया, जो आपकी पति है उन्होंने जोर जोर से हमको मारा ताकि हमको जल्दी जल्दी आना पड़ा। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ऐसा कैसे इतना सुंदर सा बच्चे है, इतना सुंदर से बालक है और एक घोड़ी भी उठवाया और साथ साथ उनको मारा भी, मेरे पति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैं उनको समझाती हूँ करके उनको बालकों को बिठाई, बोले कि आपके सुंदर पकवान बनाते हैं बैठो करके बिठा के वो जाए पकवान बनाने के। उसी समय उनके पति आया अनंत आचार्य, आके जैसे दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, खोल के तुरंत डांटने लगी, आपको शर्म नहीं आता इतना सुंदर से बालकों को आप मारते हो और इतना बड़ा गोनी उठवाते हो? तो बेचारा अनंत आचार्य पूरा दिन भर भीख भूख मांगने के लिए गया था और कुछ मिला भी नहीं, और घर आके देखता है तो पति भी डांटना शुरू कर दिया। तब बोले ये क्या सब क्या हो रहा है? तो पत्नी ने आके दिखाती हूं, अंदर जाके देखती है तो उधर जो है वो दोनों बालक गायब हो गए थे। तो अनंत आचार्य को सब कहानी बताई, तुरंत अनंत आचार्य जो है अपनी सुबह जो भगवद्गीता के ऊपर व्याख्या कर रहे थे उधर भगवद्गीता खोल के देखे, उधर जो वहां भी हम के ऊपर उन्होंने लाल मार्क लगाया था वो जो है वो गायब हो गया था। तो इसके इससे क्या पता लगता है, भगवान जो है स्वयं कृष्ण भक्तों का भार उठाते हैं, तो हमको जबरदस्ती कुछ और भार उठाने के लिए जरूरत नहीं है, हमको केवल कृष्ण का सेवा का भार उठाना होगा। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, तो ये सब चीजें कृष्ण देखभाल करते हैं, कृष्ण भार उठाते हैं। ये सोचना कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, पुराने गंदे आदतों को लेके आना, और ये सब भार जो है हमको त्याग करना होगा। वी हैव टू गिव इट अप, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ द बर्डन ऑफ एवरीथिंग। तो इस प्रकार हमको तो बक्शीनाथ ठाकुर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाके उनको सेवा, उनकी सेवा का भार के अलावा कुछ और मांगता है, वो इस प्रकार है, जो व्यक्ति एक जो बुढ़ी औरत है, वो क्या कर रही थी, वो बड़ा जंगल से भार, बहुत सारा बर्डन उठा के लेके आ रही थी। तो क्या हो गया, तो आते आते उनको थोड़ा सा पैर में मोच आ गया, तो वो बुरा बर्ड जो है, जो जंगल से वो लकड़ी वर ले गया, तो नीचे गिर गया। तो प्रार्थना करने के लिए, हे भगवान वे देखिए आओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हो गए तो बुढ़ी माँ से पूछा, क्या चाहिए तुमको? तो बुढ़ी औरत ने कहा कि अभी देखो जंगल में मैं अकेली हूं, कोई तो है नहीं, ये जो मैं उठा के लेके आ रही थी वो उठा के मेरे सर के ऊपर रखने वाला, तो मैं चाहती हूं कि आप जरा मदद करो, ये सब उठा के मेरे सर के ऊपर लगे। तो ये जो है, ये भगवान के पास जाके इस भौतिक इच्छा जो करते हैं, वो उन लोगों का इस प्रकार की भावना है। साक्षात भगवान जो सारे जगत को देखभाल करते हैं, वो सामने प्रकट होके बोल रहे क्या चाहिए, बोल रहे बस ये भार उठा के मेरे सर के ऊपर रखो। तो ये मूर्खता है। तो ये सब त्रिणावर्त की प्रवृत्तियां हैं, सॉरी शकटासुर की प्रवृत्तियां हैं। तो ये सब प्रवृत्तियों को, ये शकटासुर का अगर हम लीला का श्रवण करेंगे, कृष्ण स्वयं आके हमको इससे मुक्त कराएंगे। तो ये शकटासुर का दूसरा और एक अनर्थ को सूचित करता है, वो है आलसीपन, लेथर्जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तीसरे अध्याय में, कि सारे कर्मों को मेरा मुझे अर्पण करते हुए और मेरे ज्ञान में पूर्ण तरीके से लगते हुए, और कोई लाभ और लाभ का कोई आशा नहीं रखते हुए, और कोई प्रभुत्व को आशा नहीं रखते हुए, हमको अपना कर्तव्य, अपनी सेवा करना है। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगत ज्वरः। तो विगत ज्वरः, ज्वरा मतलब ये लेथर्जी, यानी ज्वरा मतलब आलसीपन। तो भगवान अर्जुन को ये बात कहते हैं कि युद्धाय विगत ज्वरः, तुम युद्ध करो, ये जो आलसीपन को त्याग करके युद्ध करो। और कैसे युद्ध करो, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मेरे तुम्हारे सारे कर्म को मुझे अर्पण करते हुए, निर्ममो भूत्वा, निर्ममो भूत्वा मतलब कोई अहंकार, कोई मम, कोई मेरा है, मैं कर रहा हूं, इस प्रकार की भावना को त्याग करते हुए। तो इनको युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है, विगत ज्वरः। अधिकांश लोग भक्ति मतलब सोचते हैं, ठीक है भगवान ने तो भार उठा दिया है, बस अभी हम बस एक कोने में बैठेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये जो आलसीपन है, एक भक्त कभी आलसी नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में युक्त रहने के लिए प्रयास करता है। तो जो व्यक्ति है, जैसे सुबह उठना, सुबह उठ के नहाना, कोई बहाना नहीं, बहाना भक्त जो है कोई बहाना नहीं बनाता है भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम कल इस बात को भी कह रहे थे कि जब भगवान की सेवा का जो समय आता है, उस समय कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरा जब बाकी है, नहीं ये नहीं हो रहा है, कोई अलग अलग प्रकार का कंप्लेंट्स देना नहीं चाहिए। तो ये जो आलसीपन है, उसको भी भगवान जो है वो भक्तों के हृदय से निकाल देते, अगर कोई व्यक्ति उनका अच्छी तरह से शरण लेता है। तो तो इस प्रकार ये दो प्रकार की जो अनर्थ है, एक है भार उठा के चलने की अनर्थ जो अननेसेसरी या ऐसे भार जो आवश्यक नहीं है, भौतिक भार उठा के चलने की एक अनर्थ है। दूसरा है आलसीपन। ये दो प्रकार के जो अनर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार शकटासुर को वध किए, उसी प्रकार हमारे हृदय में ये दो प्रकार के असुरों को भगवान हटाते। तो कुछ ऐसे कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो हमको ये दो प्रकार के अनर्थों से मुक्त होने के लिए करना होगा। एक है हमारी जो भार उठा के चलने की जो गंदी आदतें हैं उससे मुक्त होने की, अनर्थ से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस। ये जो गंदी आदतों से मुक्त होने के लिए हमको एक हमारे जीवन में एक प्रकार का विद्रोह, अपने प्रति विद्रोह करना होगा। विद्रोह मतलब विप्लव, रिवोल्यूशन करना होगा। जब तक एक प्रकार का विप्लव या रिवोल्यूशन नहीं करेंगे अपने जीवन में, ये पुराने आदतों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ठीक है धीरे धीरे से पुराने आदत गंदी आदत छूट जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा स्टेप लेना होता है कि नहीं बस जो हो गया आज से कुछ नहीं। जैसे किसी का सिगरेट पीने का आदत है तो उनको ऐसा कभी कभी स्टेप लेना होता है कि आज से मैं करूंगा ही नहीं, धीरे धीरे से मैं दो करूंगा बाद में एक करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। कभी कभी वी हैव टू टेक ए रेवोल्यूशनरी स्टेप। तो उसके लिए स्थान का परिवर्तन, कभी कभी संगति का परिवर्तन ये करना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि ये जो गंदे आदतों की जो माहौल है वो माहौल से हमको अलग से करना, अलग रखना बहुत आवश्यक पड़ता है। जैसे किसी का आदत है रोज टीवी देखने का आदत हो गया, तो अगर टीवी है तो वो कितना भी संकल्प ले वो देखेगा ही, तो इसलिए उनको क्या करना होगा, तो उसको कम से कम एक महीने के लिए कभी वृंदावन जा रहा है या कहीं और चले जाए जहां टीवी है ही नहीं तो मौका ही नहीं है, तो तब क्या होगा, तब उनको थोड़ा सा सुधार प्राप्त करने का कुछ चांस है। और उधर जाके कृष्ण का पूर्ण तरीके से शरण लेना होगा और कृष्ण से प्रार्थना करना होगा कि मेरा ये जो गंदा आदत है उसे छुटकारा दो। नहीं तो वैसे ही कितना भी आप प्रार्थना करेंगे सामने टीवी है तो जाके तुरंत जाके वो उंगली जाके दबाएगा और टीवी देखने बैठ जाएगा। नहीं चाहते हुए कितना भी प्रार्थना कुछ भी करो सामने है तो माया से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोला जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अलग अलग प्रकार के लोगों को, अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार की कमियां होता है, उन कमियों से दूर करने के लिए ये माहौल से माहौल को बदली करना, दूसरा है वो स्थान को बदली करना, ये कभी कभी बहुत सहायक होता है। और ये लेथर्जी यानी आलसीपन से मुक्त होने के लिए उसको क्या करना होगा, जिस चीज के प्रति वो जिन कार्यों के प्रति वो आलसीपन को व्यक्त करता है उनको जबरदस्ती उसी प्रकार का सेवा में युक्त करना। अगर किसी का बहुत आलसीपन है कि कोई चीज में कोई चीज करने में, तो उनको जबरदस्ती अपने आप को उस कार्यों में युक्त करने के लिए प्रवृत्त करना होगा और साथ साथ में कृष्ण का भी शरण लेना होगा और शकटासुर का ये जो किस प्रकार कृष्ण ने वध किया उसका स्मरण करना होगा। तो हमारा जो प्रयास और साथ साथ में कृष्ण का कृपा ये हमारे असुरों को वध करने में बहुत सहयोग देंगे। ये दो बातें हमको ये व्यवहारिक तरीके से प्राप्त होता है कि व्यवहारिक तरीके से हम जान सकते हैं कैसे ये अनर्थों से हम मुक्त हो सके। अभी हम और एक असुर का चर्चा करेंगे जो आज का है तृणावर्त। तृणावर्त का वध हुआ था पहला जन्माष्टमी में। पहला जन्माष्टमी मतलब भगवान जन्म लिए जेल में, उसके बाद जन्मोत्सव उनका मनाया गया था, नंदोत्सव मनाया गया था। ठीक एक साल के बाद उसी दिन, यानी समझ लीजिए कि वो जन्माष्टमी था, फर्स्ट ईयर कृष्णा हैज कंप्लीटेड वन ईयर, तो उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। तो नंद महाराज, यशोदा मैया, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए थे, सारे जितने भी कुलवासी सब लोग आए थे उत्सव में भाग लेने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके पहला जन्मदिन के ऊपर। तो जब ये हो रहा था तो यशोदा मैं कृष्ण को अभी दूध पिलाई। दूध पिलाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी गोद के ऊपर बैठाई। अभी कृष्ण को मालूम था अभी कि जन्माष्टमी के ऊपर एक बड़ा असुर आने वाला है, उसका नाम है तृणावर्त। और यशोदामाई गोद में उठा बिठा के उनको कभी हाथ में भी लेती थी यशोदामाई, और उनका स्थानों तक ऊपर भी लेके आती थी, कभी नीचे करती थी, और उनको लालन करती थी, थोड़ा सा जैसे ऊपर ऊपर ऐसे बच्चों को करते ऐसे करती थी। तो कृष्ण के मन में इच्छा हुआ कि यशोदा मैं तो कितना ऊपर लेके जा सकती, मुझे मुश्किल से मेरे इतना एक ऐसा और जमीन से 2 फुट 3 फुट लेके जा सकती है, थोड़ा मुझे हवा में घूम के आने का इच्छा है। अभी उनको मालूम था तृणावर्त आ रहा है। तो कृष्ण भले ही वो छोटे से है, लेकिन फिर भी वो तो उनका सारा ब्रह्मांड उनकी उनके पेट में से उत्पन्न होता है, सारा जगत उनसे उनके रोमकूप से उत्पन्न होता है। तो उन्होंने क्या किया, अब तक थोड़ा भार बढ़ा दिया यशोदा में गोद के ऊपर बैठे यशोदा में को भार उठाने को तकलीफ हो गया। तो सोचने लगे क्या हो गया मेरे बच्चे को, भूत वूत तो नहीं पकड़ा ना। हाँ, तो तुरंत कृष्ण को उठा ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जमीन के ऊपर बिठाई और वो गई। हाँ, तो ये दो लोगों को बुलाने के लिए, कुछ ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, ताकि उसका जो भूत वूत निकल जाए। उसी समय एक कंस ने तृणावर्त को भेजा था। ये तृणावर्त जो है वो एक्सपर्ट था वो बालकों को खाने में, जैसे ये पूतना जो है बालकों को चुराने में एक्सपर्ट थी, ये तृणावर्त भी बहुत एक्सपर्ट था। ये तृणावर्त जो असुर था वो पिछले जन्म में वो सहस्राक्ष करके पांड्य देश का राजा था। जैसे दक्षिण भारत में 3 प्रकार के राज्य है, पांड्या, चोला और चेरा, 3 राज्य होते हैं, दे आर ट्रेडिशनली बहुत लंबा समय से। पांड्य राज्य का एक राजा था, ये पांड्य राज्य का राजा वो 1000 उनकी पत्नियों के साथ वो नग्न नहाता था। तो उस समय दुर्वासा मुनि ने जब आ रहे थे उसी रास्ते से, तो नशे में युक्त था और वो नग्न था। तो दुर्वासा मुनि, तो मुनि आते तो महान लोग आते तो उनके सामने कम से कम कपड़ा तो पहनना चाहिए, आदर तो दिखाना चाहिए। जिससे दुर्वासा मुनि उनको देख के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शाप दे दिया। शाप ये दिया कि आप जो है पृथ्वी के ऊपर 10,000 वर्ष तो रहोगे। तो ये बात हो रहा था ऊपर के लोकों में, तब ये पृथ्वी के लोकों में वो रहने लगा। और दुर्वासा मुनि ने उनको ये भी वरदान दिया था कि कृष्ण आके तुमको रक्षा करेंगे, तिक्ष आके तुमको वध करके तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे। ये तृणावर्त आया बड़ा क्या बोलते हैं उसको, विलविंड भवंडर के रूप में आया, भवंडर के रूप में आया। तो सारे गोकुल में भवंडर आया, तो सारे जितने भी वस्तुएं थे ऊपर उड़ने लगे, धूल उड़ने लगा, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी समय तृणावर्त आके कृष्ण को जब उठाए तो कृष्ण उस समय तक हल्का हो गए थे, तो तृणावर्त तो कृष्ण को ऐसे उठा के एकदम ऊपर तक जाने लगे। तो कृष्ण देखने लगे, वाह अभी ऊपर जा रहे, और ऊपर गए। तृणावर्त सोचा गया एकदम ऊपर तक जाऊंगा, ऊपर से एकदम नीचे कृष्ण को फेंक दूंगा ताकि वो उनका मृत्यु हो जाए। तो तृणावर्त ऊपर जा रहा था, जैसे ऊपर जा रहा था कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपना गला पकड़ लिया तृणावर्त को। तो गला पकड़ के तृणावर्त सोचने लगे कि छोड़ो, क्योंकि तृणावर्त का जो सांस नहीं ले पा रहा था। तो कृष्ण को छुड़ाने के लिए तृणावर्त बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन छोड़ ही नहीं देते। और साथ साथ में क्या होने लगे, कृष्ण केवल तृणावर्त को गला ही नहीं पकड़ा, बल्कि वो और भारी होने लगे। कृष्ण जैसे और भारी होने लगे, तृणावर्त और ऊपर जा नहीं पा रहा था, वो नीचे आ रहा था। तो तृणावर्त जो है एकदम ऊपर से नीचे गिर पड़ा। तो ये तृणावर्त का कृष्ण इस प्रकार वध किए। तो विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, पूतना का वध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी होंठों को शक्ति दिखाया, और शकटासुर का वध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो चरण कमल है, जो एकदम जो टेंडर लीव्स जैसे जो पत्ते हैं, अभी अभी नया नवनीत पत्ते होते हैं, तो उनका समतुल्य चरण कमलों का जो शक्ति दिखाया। और तृणावर्त का वध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों का शक्ति दिखाया। और जैसे तृणावर्त ऊपर से नीचे गिर पड़ा, तो उस समय सारे जितने भी गोकुलवासी यहां के देखने लगे, इतना भारी सा बड़ा सा शरीर है, और कृष्ण आराम से उस शरीर के ऊपर खेल कूद रहे। तो सारे गोकुलवासी खासकर यशोदा में जाके कृष्ण को उठा के फिर से वही जो उनकी रक्षा के लिए जो कार्यकलाप करना था वो सब वो करने लगे। तो ये तृणावर्त का जो वध है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिनावत ऐसे असुर को सूचित करता है जिस जो हमारे हृदय में वो बहुत गहराई से निवास करता है, वो है अहंकार। जैसे अहंकार अलग अलग चीजों की वजह से आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ ऐसे अहंकार होता है जो धन के वजह से आता है, बड़ा महान कुल से उत्पन्न होने की वजह से अहंकार आता है, सुंदर होने की वजह से अहंकार आता है, कोई व्यक्ति धनी होने की वजह से अहंकार आता है, या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होने की वजह से, या श्रुति या बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करने की वजह से अहंकार आता है। तो कुंती महारानी इस बात को कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर यदमान उदप्पुमान नैवार्यत चविदातम मई त्वाम अकिंचन गोचरम। जन्म बड़े परिवार में जन्म होने का, ऐश्वर्य धनी होने का, श्रुत बड़ा विद्वान होने का, और श्री जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री बहुत सुंदर होने का, ये चार चीजें स्वाभाविक तरीके से व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न करता है। तो ये जो त्रिणावर्त है ये बड़ा प्राइड बिकॉज ऑफ लर्निंग, बहुत बहुत सारा विद्वत्ता की वजह से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है ये सूचित करता है। जो विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है ये इतना गहरा अहंकार है, ये हमारा पतन ऐसी पतन हो जाता है इसकी वजह से, और जिसके द्वारा हम वापस भक्ति में नहीं आ सकते हैं। जैसे दो प्रकार के फॉल डाउन होते हैं, एक प्रकार का फॉल डाउन एक प्रकार का पतन है, वो है सेंशुअल फॉल डाउन, यानी हमारी इंद्रियों को नियंत्रण ना करने की वजह से जो पतन होता है उसको सेंशुअल फॉल डाउन बोला जाता है। ये अहंकार होता है, ये इस प्रकार का पतन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को अहंकार आया। किसका अहंकार आया? धन का अहंकार है, या सुंदरता का अहंकार है, और बहुत सारे इंद्रिय विषयों को भोग को संग्रह करने की सामर्थ्य को देख अहंकार है। तो ये इतना अधो अंधकार में लेके नहीं जाता है, इंद्रिय भोग के वजह से उत्पन्न हुआ जो पतन है वो इतना गहरा इतना बड़ा माना नहीं जाता है। लेकिन जो विद्वत्ता के वजह से उत्पन्न हुआ अहंकार है उसके द्वारा क्या हो जाता है, एक व्यक्ति का फिलोसॉफिकल फॉल डाउन होता है। फिलोसॉफिकल फॉल डाउन मतलब जो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत के विरुद्ध कुछ और सिद्धांत प्रस्ताव करना, इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल फॉल डाउन। ये जो फिलोसॉफिकल फॉल डाउन है ये बहुत हमको और अधोगति की ओर लेके जाता है, एंड फिर वापस सही सिद्धांत चीज को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को। इसलिए हमारे आंदोलन में भी प्रभुपाद जी ने ये दो प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार व्यवहार किया। एक बार कुछ लोग बोलने के, नहीं प्रभुपाद जी भगवान है, कुछ सन्यासी शिष्य थे प्रभुपाद जी के समय, तो प्रभुपाद ने तुरंत क्या किया, उन सबको संस्था से बाहर निकाल दिया। तुरंत जैसे उन्होंने इस बात को सुना तो संस्था से बाहर निकाल। लेकिन कुछ ऐसे थे, कुछ सन्यासी थे, अपने सन्यास धर्म को स्वीकार नहीं कर बना के नहीं रख पाए, तो उसके बाद भी प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ठीक है अगर आप कुछ भी हो आपने फिर से अपना जो उल्टी वापस भी खाया, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगे रहो करके फिर के उन्होंने अपने उनको संस्था में वापस लिया। तो एक जगह लोगों को फिलोसॉफिकल फॉल डाउन था तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको भगा दिया, नो यू कैन नॉट कम बैक। लेकिन जिनका जो सेंशियल फॉल डाउन था उन लोगों को क्या किया, प्रभुपाद ने फिर से उन्होंने स्वीकार किया, फिर और एक मौका प्रदान किया। ये त्रिणावर्त जो है विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है उससे क्या होता है हमारे अंदर ऐसा आता है, ठीक है ये सिद्धांत तो तुम जाते हो इससे ज्यादा मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छा ये आचार्य ने कहा मैं भी तो आचार्य हूं उससे अच्छा टीका लिख सकता हूं, मैं ये सिद्धांत ये तो ये क्या क्लास दे सकता है, इनको तो संस्कृत तो मालूम नहीं है, मुझे मालूम है संस्कृत, मेरा बात सुनो मैं सिद्धांत कहूंगा। तो इस प्रकार ये जो विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जो विद्वान होते हैं उनको हमेशा नम्र सेवाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। और त्रिणावर्त को भी भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुछ समय कर त्रिणावर्त को बोला जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो ये जो फिलोसॉफिकल फॉल डाउन है या विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है वो शुरुआत में पता ही नहीं लगता, वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो सुंदर सुंदर व्याख्या दे रहा है, सब लोग वाह वाह करते रहेंगे तो ये व्यक्ति और ऊपर ऊपर जा रहा है, और जब नीचे गिरता है तो मालूम नहीं पड़ता कैसे गिरा, क्या हुआ और कहां गया, तो अचानक से होता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है मजा आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं कृष्ण को पकड़ के जा रहा हूं। लेकिन जब कृष्ण उनका गला पकड़ते हैं, दबा देते हैं और भारी हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो ऐसा वर्णन आता है जब आंख भी बाहर आके निकल गया उनका गला पकड़ने की वजह से, और नीचे गिर के उनका हाथ पैर टूट के गिर पड़ा। तो ये तृणावर्त ये बहुत गहरा असुर है हमारे सबके हृदय में, खास करके जो विद्वत्ता में रमना चाहते हैं उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए उनके अहंकार से, क्योंकि विद्वत्ता का जो अहंकार है और गहरा होता है, बहुत वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एसेंशियल प्लेटफॉर्म सेंशुअली या और कोई व्यक्ति और कोई चीजों के प्रति उत्पन्न हुआ अहंकार है, उसका परिणाम जल्दी आ जाता है तो जल्दी सुधर जाता है व्यक्ति, लेकिन इसको जल्दी पहचानना जल्दी सुधरना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कृष्ण से वो प्रार्थना करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भक्ति के शुद्ध सिद्धांत है उनका विरुद्ध कभी ना जाए, और विद्वत्ता के बल के ऊपर मैं किसी के प्रति अपराध ना कर बैठूं। तो इस प्रकार हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और खास करके जो भक्त हमेशा प्रचार में युक्त रहते हैं और उनके विद्वत्ता का स्वभाव रहता है, तो उनको हमेशा भक्तों के प्रति नम्र स्नेहों को स्वीकार करने से ये असुर को जल्दी जल्दी हम वध कर सकते हैं। क्योंकि भक्तों का सेवा करेंगे, कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त को उस विद्वान भक्त को मदद करते हैं ये जो अहंकार है उसे मुक्त होने का। इसलिए खास करके जो प्रचारक होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नम्र सेवाओं को करना चाहिए भक्तों के प्रति। ये करने से क्या होगा, उनको ये जो तृणावर्त को वध करने में उनको बहुत आसान होगा। तो यही है तृणावर्त के बारे में और शकटासुर के बारे में। और उसी अध्याय में एक बहुत सुंदर लीला आता है जहां भगवान श्री कृष्ण को एक बार यशोदा में दूध पिला रही थी, दूध पिला के कृष्ण का सुंदर से चेहरे को देख के आनंदित हो रही थी। उस समय में कृष्ण ने जैसे अपने यशोदा माई का स्तनपान करके तुरंत अपने मुंह खोला, तो यशोदा माई ने देखा उनके कृष्ण के अंदर सारे ब्रह्मांड है और सारे जितने भी अंतरिक्ष सब दिखाई पड़ने लगे। और उस ब्रह्मांड के अंदर उस गोकुल के अंदर यशोदा में फिर से दूध पिला रही है कृष्ण को, वो दिखाई पड़ा। और उसके अंदर कृष्ण के मुंह में और एक ब्रह्मांड है, और उसके अंदर ये सब देख के पूरा विस्मय यानी ये जो कंफ्यूजन, जो अपने पुत्र भगवान है और उस भगवान करके वो यशोदा में जानती नहीं, लेकिन वात्सल्य रस के वजह से उनके अंदर कंफ्यूजन आ गया, कृष्ण को भूत प्रेत तो नहीं लगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार फिर से ये जो ऐश्वर्य शक्ति है भगवान का यशोदामय का वात्सल्य का फिर से परीक्षा करने के लिए आई। ये भागवतम का 10वां संत का 7वां अध्याय का यही तात्पर्य है कि बार बार ये ऐश्वर्य शक्ति भगवान का यशोदामय का वात्सल्य को परीक्षा कर रही है, और हमेशा यशोदामय का वात्सल्य जीतते हुए आई है, परीक्षा में पास होते हुए आई करके विष्णुदेव ठाकुर इस बात को वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न वगैरह तो हरे
As you gave an example of an old lady, which you know, because of a bone crunch, she asked Krishna in for you know lifting her load and you know putting on her head. Then it's in the book on the way to Krishna. Krishna Prabhupada say that now I must tell Krishna, you know, that what problems he is facing. Even if someone has some material desire, he should like you know he approaches Krishna. Right. As in Bhagavad Gita also, Krishna says like four kinds of person comes to me. Yeah. So, like, can you elaborate it more?
जैसे कल इनका प्रश्न ये है कि मैंने on the way to Krishna में पढ़ा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही किसी का अगर भौतिक इच्छा भी है तो उनको कृष्ण के पास जाके बोलना चाहिए। ये मैंने पढ़ा तो चार प्रकार के लोग कृष्ण के पास आते हैं, तो ये उसके बारे में और विस्तृत रूप में बता सकते हैं क्या? ये सही बात है, जैसे गजेंद्र का बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि ए जेंटलमैन इज वन हु व्हेन देयर इज प्रॉब्लम ही अप्रोचेस कृष्ण। ये बात है भागवत के ऊपर आधारित है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि अगर आपको ये इच्छा है तो ये देवता के पास जाना चाहिए, ये इच्छा है तो ये देवता के पास जाना चाहिए, ये इच्छा है तो ये देवता के पास जाना चाहिए, सब लंबा चौड़ा लिस्ट देते थे गोस्वामी पाद। ये सब लिस्ट देने के बाद अंत में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेताम पुरुषम परम। जो उदारधी मतलब जिनका बुद्धि बहुत विकसित हो चुका है वो क्या करता है, चाहे भले ही उसके पास सारे कामना हो, उनके पास कोई कामना है ही नहीं, या मोक्ष की कामना हो, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो कोई व्यक्ति, उदारधी वो बुद्धिमान होने के कारण वो तीव्रता से अर्कवत, वैष्णव ठाकुर अर्कवत बोलते हैं, जितना सूर्य का तेज और तीव्रता रहता है रोशनी प्रदान करने में, ताप प्रदान करने में, उतना ही तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है। उदाहरणार्थ गजेंद्र, तो गजेंद्र ने क्या किया, उनको बहुत दुख लग रहा था, कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे, इतना दुख था, उन्होंने भगवान की इतना स्तुति करने का, उन्होंने कहा कि जो एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति वै भगवत प्रपन्ना, मुझे मालूम है एकांतिनो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कांचन किसी और की अभिलाषा नहीं करते, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे ये जो दुख है उससे मुक्त कराइए। गजेंद्र दुखी में दुखी था उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान के पास शुद्ध हृदय से ही भौतिक इच्छा के लिए भी अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, भगवान उस भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के साथ साथ भौतिक इच्छा करने की प्रवृत्ति को भी निकाल देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास भौतिक इच्छा है, आप देवताओं के पास जाएंगे, देवता लोग भौतिक इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन कृष्ण क्या है, भौतिक इच्छा पूर्ण करने के साथ साथ इच्छा करने की प्रवृत्ति को भी निकाल देंगे। कृष्ण नॉट ओनली सैटिस्फाई द डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, बट ही एक्सटिंग्विशेस द मटेरियल डिजायर्स, बट द डेमीगॉड्स विल नॉट डू दैट। तो लेकिन जब तक पूर्ण तरीके से भौतिक इच्छा से मुक्त होता है, मुक्त नहीं होता, तब तो उसको शुद्ध भक्त नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो भक्त है, भौतिक इच्छा के लिए कम से कम भगवान के पास तो आया, और उनके अंदर ज्ञान भी है कि मेरे पास भौतिक इच्छा ही खराब है, लेकिन फिर भी मैं विवश हूं, ये बातें तो कह रहा है गजेंद्र जैसा। तो इस संसार में सभी लोग दुखी है, और भगवान के पास गजेंद्र जिस प्रकार प्रार्थना की है, उस भावना से अगर कोई व्यक्ति आता है वो कभी ना कभी शुद्ध भक्त बनेगा ही, तुरंत शीघ्र, कभी ना कभी मतलब ये नहीं कि अगले जन्मों में, शीघ्र ही बनेगा, ये निश्चित रूप है, ये सही बात है, दिस ट्रू, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग।
सेकंड क्वेश्चन वाज दैट एज यू सेड इफ अ पर्सन इज लेजी, या डिवोटी इज लेजी एंड ही हैज टू टेक इट आउट, सो वन हैज टू टेक सिंसियर एफर्ट्स एंड डू द सेम सर्विस व्हिच ही डजंट वांट टू डू,
या
एंड एज यू सेड लाइक यू गिव अनदर एग्जांपल दैट when other devotees or senior devotees give you some service, so one should not tell them, oh, I cannot do it because I'm I already engaged, or I'm busy, or this or that. It's also laziness. But then there are so many things, one has to manage the thing, or one is already doing some service and some other senior devotee comes, or senior Vaishnavas come, and he says, oh, could you do this? Then
इसी बात के ऊपर कल कह रहे थे, इनका प्रश्न ये है कि मान लो कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, सेवा में युक्त हूँ, उसी समय कोई और सीनियर वक्ता के एक और को बोलते, एक और बोलते, हम डिस्टर्ब, क्या करना है। देखिए कल एक बार लड़के से भी यही बात कहा था, मान लीजिए कि आप जपा कर रहे, कोई और सेवा भी है आपका, लेकिन जपा कर रहे, कोई आके बोलता है ये कर दो, थोड़ा ये करो, अगर ये रोज रोज हो रहा है, हैपनिंग डेली, तब आप अपने जो सीनियर भक्त, अपना जो काउंसिलर, उनसे बांट के विचार करके आप अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक आध बार कोई हो गया तो, अगर जपा भी नहीं हुआ तो भक्तों की आज्ञा है, तो भगवान ने भक्तों के द्वारा आपको सेवा दिया है, वो कर दीजिए। इट इज हैपनिंग वंस इन ए व्हाइल, जैसे आप जपा कर रहे हो, अचानक आए कोई व्यक्ति, अगर प्रभु जी आज थोड़ा सा बीमार पड़ गया किचन में, कोई व्यक्ति साफ सफाई करने के लिए नहीं, तो आप आ सकते हो क्या, ही इज रिक्वेस्टिंग यू, तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं मेरा जपा बाकी है, मेरा ये सेवा नहीं है, ये बोलने से अच्छा कि कर दो। अगर ये रोज रोज इधर उधर हो रहा है, इसकी वजह से आपको भक्ति डिस्टर्ब हो रहा है, then you sit with the senior devotees and sort out, tab aapka adhikar banta hai. But once in a while when it happens, what is wrong in doing it? Just be awake for reduce your other material activities, like sleeping or some eating or something, and complete your rounds one day, once in a while it's okay, you should not just refuse. Hamesha congregation kisi ko sabko yehi batata hu, कोई व्यक्ति आके आपसे पूछा कि सम सर्विस इज देयर प्लीज डू कम. इट इज हैपनिंग वंस इन ए व्हाइल, वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ, लाइक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन. यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट. लाइक व्हेन देयर इज इमरजेंसी, इवन दो इट इज नॉट योर वर्क, यू डू इट. इमरजेंसी होता है दुनिया राष्ट्र में, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, तब क्या होता है, जो मिलिट्री में भी नहीं है उन सबको दावा करेंगे, जो भी एनी यंग मैन बिटवीन 15 to 30 दे शुड कम एंड ज्वाइन द आर्मी. भले ही आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बस बंदूक लेके लड़ाई करो, है कि नहीं. सो इन इमरजेंसी इज ओके, बट नॉट ऑलवेज. वी शुड बी प्रैक्टिकल, बट ऑलवेज वेन एवर सर्विस कम टू यू, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रोग्रेस इन कृष्णा सर, कृष्ण कॉन्शियसनेस. वी आर नॉट हियर इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी. No, this is the system. This is what it is. And this is my profile. This is my portfolio. This is my this thing. Is se acha is se nahi nahi karega. No, that is not our mood. The mood is very important. Mood has to be done.
Saiswari Shakti was always testing Yashodamai Vatsalya.
Yes.
And she was always getting passed.
Yes.
So if one understands Krishna's Aishwarya Shakti, Supreme Personality of Godhead, he or she cannot have a vasalya relationship with the Lord. What does it mean exactly?
Yeah. So this is regarding Yashoda. Inka prashn ye hai ki ye Aishwarya Shakti bar bar Yashoda mein ki vatsalya ko pariksha kar rahi hai. To agar kisi ko Aishwarya Shakti ka purna jnan hai, kya wo vatsalya bhavana ko utpanna nahi kar sakta hai? Is it? जब तक भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं हो, तब तक माधुरी में प्रविष्ट नहीं हो सकते. यशोदा मैं वो स्तर को पार कर चुकी है. शी इज ऑलरेडी पास दैट स्टेज. फर्स्ट, जैसे भगवद्गीता के 10वें अध्याय में भगवान विभूतियों को वर्णन करते हैं. बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विभूतियों को श्रवण करता है, विभूतियों को जानता है, वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है. भक्ति में दृढ़, साधना में दृढ़ होने के बाद धीरे धीरे से व्यक्ति भाव में प्रविष्ट होके, भाव में प्रविष्ट होने के बाद प्रेम में प्रविष्ट हो सकता है. यशोदा माँ एक कौन सी स्तर में है? प्रेम के स्तर में है. भगवान की प्रेम, वात्सल्य प्रेम के स्तर में है. और वो भी किस प्रकार का प्रेम है? वो भी गोपकुल में जन्म लेके उस प्रकार का प्रेम है. तो ये जो शुद्ध विशुद्ध वात्सल्य रस है, ये हम हमारे लिए लागू नहीं कर सकते. We cannot apply the formulas for them to us. They are on a different scale, different formula. लेकिन ये सब चीजें चर्चा करने के द्वारा हम शुद्ध होंगे. यशोदा माई को जय जय जयमानम च पश्येत, उपनिषद कहता है. पश्येत, अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान के साथ संबंध को देखना है, तो क्या करना होगा? जयमानम, जय करना होगा. भगवान और उनके भक्तों का जय करना होगा, गुणगान करना होगा. The glories of Krishna and the devotees, when we glorify Yashoda Mai's Vatsalya, saying that even Aishwarya Jnana is not able to defeat Yashoda's Vatsalya, by saying these things every time, hearing this every time, we'll be purified. This is all for purification, not for I will not read the 10th chapter of Bhagavad Gita, I don't have to, because that is all this thing. No, we are not on that stage. But at the same time, we glorify these things. She knows, but the Leela Shakti covers the knowledge. Yashoda knows. The gopis know. Yeah, the gopis, it's not that the gopis don't know. They say, Vikana Sartito, Vishwaguptaye, Akila Dehina, Mantaratmadik. Akila Dehina, Mantra. Oh, you are there in everybody's heart as super soul. Vishwaguptaye. Vikana Sartito. You are the. All the people who are suffering in this world, they are taking shelter of you. The gopis know this thing. But still, they are not attracted to that feature of the Lord. So, it is not that they don't know, but that knowledge of Krishna and Supreme Personality of God is covered by the Madhurya, so that their relationship is not hampered. So, by discussing these things, we get purified. But we also know that we are not on that platform. So, 10th chapter of Bhagavad Gita is also important for us. That means to understand the vibhutis, that how the Lord is so great. By how the Lord is, greatness of the Lord not the spiritual greatness of the Lord. The material greatness of the Lord is also important for a devotee. So 10th chapter is also important. Bhagavad Gita, where Krishna talks about, I am this among this, I am this among this. All these things. Okay?
You are talking about fall downs. There are two kinds of fall downs. So, like here you are talking of philosophical deviations. So, how one can realize or how I can see that now he is getting philosophical? Because you said that one keeps on going, and then finally he's fall down. So, at what stage you can
see, it is because of Krishna's mercy you get spiritual knowledge. Tadai buddhyugantam yena upayantite. So when a devotee thinks, oh, it is because of my hard work and endeavor and my intelligence I am becoming learned, then what does Krishna do? He'll take away the knowledge. Or he says, okay, you try to understand my scripture, then you have your mental speculation coming. And this philosophical deviation you cannot recognize by yourself. That is another problem with philosophical deviation. Whereas sensual deviation, there is, you can understand, you see, so many lusty desires are coming in me, and there is a possibility of understanding that I am not able to follow the standards of so much of sense control, because it is very gross. You can see those things, you can perceive those things. Hum pehchan sakte hai ki ye indriyon ka nitna itna nahi ho pa raha, itna hona chahiye tha, nahi ho pa raha, itna mera man mein pradushan hai. Lekin in philosophical deviation mein vyakti kya hai? वो सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है. उसके लिए फॉर दैट वेदर यू आर डिवेटिंग और नॉट, फॉर दैट यू शुड ऑलवेज हैव ए पर्सन हु इज हु टेल्स यू दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस रॉन्ग. दैट इज वाई इवन दो वन मे बी ए बिग स्कॉलर, ही शुड ऑलवेज सिट इन द भागवतम क्लासेस, इन द क्लासेस ऑफ अदर डिवोटीज ऑल्सो. इट हैज बीन सीन दैट many devotees who become very great scholars of Krishna consciousness, they would not listen to Prabhupada lectures, or they would not listen to lectures given by other devotees, they would not listen to lectures given by his own Guru Maharaj also. It happens like that, just because they think I know better than him. And Krishna, seeing this pride, he will, oh, you know better than them? Okay. Dadame buddhyuntam, I gave you that, I'll take it back, because I gave, I have the right to take it back. Right to take it back. That's the thing. So I was shocked when it so happened that my Siksha Guru, he came to our temple all of a sudden. I was not knowing that. Then after evening 7:30 or so, I met him. And I just shocked, you know, when did you come? You know, I came at around 6 o'clock. Then he told, where were you? You know, nobody informed me I should have met you. I was sitting in the temple. I told, why you were sitting in the temple? You should have come to your office and then, you know, had prasadam and all these things. You should have told me. No, the Bhagavad Gita class was going on. I was hearing that. I was shocked. And the class was given by, you know, just a neophyte devotee who doesn't know how to speak anything. But just in our temple, there are a few devotees who, specifically to train the new devotees to give classes, we have this Bhagavad Gita class. The Bhagavad Gita class is meant for that. So that new devotees get an opportunity to speak, because they don't get an opportunity to speak in the Bhagavatam class. And that day, the devotee was giving the class, he was like really a comical devotee. And I thought, why are you listening? How are you listening to this class? How are you able to tolerate that? He is known in ISKCON for his extempore and wonderful class. Then he told me that Krishna can speak to you through anybody. When I told this thing, so he actually instructed me, you know, in spite of you being listening to my classes, you did not have this understanding that Krishna can speak to you through anybody. So actually on that day he taught me this thing. It's a very important instruction. Krishna can speak to you through anybody. Who knows? I will tell you a small story regarding this. it comes in the Upanishads. There was an Brahmin who had a very brilliant son, and he sent his son to the Gurukul, and he became such a learned scholar, such a great scholar in the Vedic scriptures. Itna vidwan ban ke wo unke Brahman ke putra, Gurukul ka education ke baad wapas ghar mein aaye. Ghar mein aane ke unka vidvatta dekhke sara jo shahar hai sab log mohit ho gaye the vidvatta, unka pravachan sunke, aur sab log vaah vaah karte the. Tab lekin unka pitaji जो है उनको वाह नहीं करते थे। तो इनका पुत्र को ईर्षा होने लगा, तो सारा जगत मुझे मानता है, मेरे पिताजी मुझे एक बार भी आके नहीं बोले कि तुम बेटा क्या प्रवचन दिया है। हाँ, एक बार कम से कम अच्छा दिया, अच्छा बोला, तुम इतना जानते हो, कम से कम कुछ तो सराहना करना चाहिए। तो उनके अंदर ईर्ष्या इतना हो गया तो उन्हें सोचा कि मैं पिताजी को वध कर दूंगा, आई विल किल हिम। ये उपनिषद में कहा, दिस स्टोरी कम्स। तो उस दिन रात को उन्होंने निश्चय किया, अपने चाकू लिया और वो कमरे के अंदर हो गए। तब कमरे के अंदर जैसे अंदर गए तो उनकी पत्नी, उनकी माँ अपनी पति या उनके पिताजी से बात कर रही थी। देखो सारा जगत उनका वाह-वाह करता है, कम से कम अपने बेटे को तो बोलो अच्छा प्रवचन देते हो, कुछ तो एनकरेजमेंट करो। तो पिताजी ने अपने पति को बोला, पत्नी को कहा, देखो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, कितने लोगों को ऐसा पुत्र प्राप्त होता है, क्या तुम ये नहीं जानती हो मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ही डर है, अगर मैं भी उनको वाह-वाह करूं, मैं भी उनको चढ़ाऊं, तो वो उनके अंदर अहंकार आएगा, तो अहंकार की वजह से मेरा डर यह है कि उसका पतन हो जाएगा, इसलिए मैं उनको हमेशा अपना एक पुत्र के रूप में एक नम्रता को बना के रखने के लिए मैं इस प्रकार की भाव को अपनाया हूं। तो जैसे ही बात को सुना तो तुरंत वो जाके अपने पिताजी का चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ के उन्होंने उस समय उन्होंने अपने पिताजी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये बात, इट इज ट्रू, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।